समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन कार्यक्रम परिक्रमा का, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सारी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। श्रोताओं, आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे कि क्या कुछ है खास उनके पास। इसके अलावा खेल गतिविधियों पर भी रहेगी हमारी नजर और हम करेंगे उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी याद जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। श्रोताओं, परिक्रमा के इस अंक के साथ मैं हूं आकर्षिता सिंह और मेरे साथ हैं मेरी को होस्ट शगुन चोपड़ा। शगुन, आपको भी मेरा नमस्कार।
नमस्कार आकर्षिता, अ हार्ट फेल्ट हेलो, गुड आफ्टरनून, गुड डे एवरीबॉडी। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 एफएम विद शगुन चोपड़ा एंड आकर्षिता। आकर्षिता गेव यू द डिटेल्स, सो लेट मी ऑल्सो टेल यू द डिटेल्स अबाउट द प्रोग्राम इन ब्रीफ। वील गिव यू अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, ऑल्सो our discussion segment Dateline India is there, the second segment. We'll also provide you reports, tributes, and there is a lot more. So make sure, listeners, that you tune with us, you keep yourselves tuned in, and you be with us for the next half an hour, roughly, for the next 30 minutes. And we'll begin our program with the headlines first, shall we?
Ji. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले के मद्देनजर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ बैठक की।
Jammu and Kashmir Assembly expresses shock and anguish over the barbaric terrorist attack in Pehelgam, terms it an attack on Kashmiriyat.
भारत ने भ्रामक सूचना फैलाने पर 16 पाकिस्तानी YouTube चैनलों पर प्रतिबंध लगाया। पहलगाम आतंकी हमले पर BBC की रिपोर्टिंग पर भी आपत्ति जताई।
India and France sign deal for procurement of 26 Rafale marine fighter aircrafts.
और IPL क्रिकेट में आज शाम जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा।
And now it's time, listeners, for our segment Dateline India. And today we will talk about World Day for Safety and Health at Work. Let me begin this segment, Akarshita, for our listeners with a quote that I remember reading. Carefulness costs us nothing. Well, carelessness may cost someone's life. Carefulness and carelessness.
जी हाँ, सुरक्षा महंगी नहीं है, ये अमूल्य है।
Well, every year it is marked World Day for Safety and Health at Work on April 28, and it is to promote workplace safety and foster a healthy work environment in all sectors, whatever they may be.
जी हाँ, हर साल आज के दिन ही World Day for Safety and Health at Work मनाया जाता है। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि जिंदगी अनमोल है और काम करते वक्त हमारी सुरक्षा और सेहत सबसे पहले आनी चाहिए। हम सभी चाहते हैं कि जहां हम काम करते हैं वो जगह सुरक्षित और सेहतमंद हो, लेकिन कई बार लापरवाही या सुविधाओं की कमी से हादसे हो जाते हैं जो न सिर्फ जान का खतरा बनते हैं बल्कि परिवारों को भी गहरे दर्द में डालते हैं। कार्यस्थल पर सुरक्षित और स्वस्थ कार्य वातावरण एक मौलिक अधिकार है।
Also, Akarshita and all the listeners, despite these important decisions and the significant progress in occupational safety and health, well, work-related accidents and diseases still occur too frequently, which they should not, with devastating impacts also on workers, also on enterprises and entire communities and therefore the economies.
जब हम काम करते हैं तो हमारा पहला हक बनता है कि वहां का माहौल सुरक्षित हो, है ना शगुन
जी?
जहां भी हम काम करते हैं, जब तक हमें वहां पे सुरक्षा की अनुभव नहीं होगा, हमें ऐसा नहीं लगेगा कि हम यहां पे सुरक्षित हैं, जब तक हम असहज महसूस करेंगे तब तक हम काम में भी अपना 100% नहीं दे सकते हैं।
वी वोंट बी एबल टू वर्क विद आवर फुल पोटेंशियल
जी। और बहुत ढेर सारे ऐसे व्यवसाय हैं जैसे आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जो काम करते हैं तो उनकी सुरक्षा के लिए वो हमेशा एक हेलमेट लगा के रखते हैं,
राइट?
तो ऐसे कई सुरक्षा उपकरण होते हैं और कई तरह की गतिविधियां और चीजें होती हैं जो अलग अलग व्यवसायों के लिए बहुत ही जरूरी हैं। और इस दिन को मनाने का उद्देश्य है श्रोताओं की दुनिया भर में कंपनियां, सरकारें और संस्थाएं काम के दौरान सुरक्षा मानकों को बेहतर बनाएं और काम करने वालों की सेहत का ध्यान रखें। कोई भी इंसान अपनी जान को जोखिम में डालकर रोजी रोटी कमाना नहीं चाहता है.
ट्रू दैट.
और हम अब भी कई चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जैसे असंगठित क्षेत्र में सुरक्षा मानकों की कमी, पर्याप्त प्रशिक्षण का ना होना और सुरक्षा उपकरणों की कमी, कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा उपायों की कमी, रिपोर्टिंग और डेटा संग्रह में पारदर्शिता की कमी. तो आज भी ऐसे बहुत ढेर सारी चीजें हैं जो हमें ये याद दिलाती हैं कि हमको अपने वर्क प्लेस पे जो चीजें हैं उसमें, जैसे जो सुरक्षा के उपकरण हैं, उन सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है.
वी शुड बी अवेयर अबाउट देम.
जैसे एज अ वुमेन व्हेन वी गो थ्रू द मेंस्ट्रुएशन एंड आल्सो इट इज द ड्यूटी ऑफ द कंपनी, इट इज द ड्यूटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन
व्हिच वी आर वर्किंग फॉर,
कि वो हमें वो सुरक्षा उपकरण मुहैया कराएं.
True that, Akarshita. And also, listeners, it's important here to listen intently that you might be knowing, or even if you don't know, let me tell you, the lack of awareness of health hazards at workplaces leads to misdiagnosis by doctors. Very important point to lay your attention upon. Many injuries, also accidents and diseases going, they are not registered. Sometimes they go unregistered. And there is massive underreporting of industrial injuries. You were also talking about it. Industrial as well as construction, even involving that. In small scale industries, well, underreporting, it is more likely to be in case of non-fatal injuries than fatal ones for obvious reasons. And they go unregistered. We often forget about them.
जी. और अक्सर हम सुनते हैं कि किसी कोई ऑफिस था और इतने माले की बिल्डिंग थी और उसमें आग लग गई और बहुत ढेर सारे जो कर्मचारी हैं उनको
these kind of reports they come in.
अक्सर हम सुनते हैं. तो आप श्रोताओं जो है अपनी सुरक्षा के साथ साथ और एज अ पर्सन ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि हम भी एक ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है. कल को आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के सीईओ हो, किसी कंपनी के मालिक हो, तो उस समय भी आपको अपने कर्मचारियों का ध्यान रखना चाहिए और आप जहां काम कर रहे हैं वहां पे सुरक्षा मानक के जो उपकरण हैं वो हैं कि नहीं, वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, रूल्स रेगुलेशन, आपको उसका बहुत ध्यान देना चाहिए.
इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन शुड बी मेड इन दिस रिस्पेक्ट, डेफिनेटली.
जी, जैसे आप देखते हैं कि हर जगह जगह फायर एक्सटिंग्विशर लगे होते हैं,
वो भी
कभी आग लग सकती है. तो आप सुरक्षा उपकरणों से और मानकों से बिल्कुल भी समझौता ना करें.
रियली इंपॉर्टेंट एंड सीरियस कंसर्न.
जी, तो पीड़ितों को राहत पहुंचाने तथा सुरक्षित एवं स्वस्थ कार्यस्थलों के लिए प्रभावी रोकथाम नीतियां बनाने के लिए एक विश्वसनीय व्यावसायिक दुर्घटना एवं रोग रिपोर्टिंग प्रणाली अत्यंत महत्वपूर्ण है.
Yes, and also listeners, this day was initiated by the International Labour Organization in the year 2003. The aim was to advocate for workplace safety standards, which we were also talking about, and also prioritizing employee well-being.
आज के समय में जहां तकनीक तेजी से बढ़ रही है वहां काम के तरीके भी बदल रहे हैं. ऐसे में सुरक्षा उपायों को अपडेट करना बहुत जरूरी है. कुछ मुख्य बातें जो इस दिन के महत्व को बताती हैं, कर्मचारियों की जान और सेहत की रक्षा करना पहला. दूसरा, कंपनियों को सुरक्षा के बेहतर उपाय लागू करने के लिए प्रेरित करना और सरकारों को सख्त सुरक्षा कानून बनाने के लिए जागरूक करना. काम के माहौल को तनाव मुक्त और स्वस्थ बनाना. ऐसा नहीं है
Essential
कि हमें कुछ जो है फिजिकल हार्म हो, हमको मेंटल हार्म से भी उनको प्रोटेक्ट करना है. हम फ्रीली काम कर पाए जो है जहां भी हमारा
टू आवर फुल पोटेंशियल एंड दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल.
हाँ, क्योंकि हम अपना पूरा दे पाएंगे, 100% दे पाएंगे. और भविष्य में हादसों को रोकने के लिए जरूरी कदम उठाना. ये दिन हम सबको एक मौका देता है कि हम सुरक्षा के प्रति अपनी जिम्मेदारी को गंभीरता से समझें.
Also, let me tell our listeners about the theme for this particular year. Well, it is revolutionizing health and safety, the role of AI and digitalization at work. AI, artificial intelligence, is coming up. It is already there and taking its newer forms every day. And the aim, which, let me explain it, it is to highlight the transformative impact of emerging technologies on occupational safety and health.
अंतर्राष्ट्रीय श्रम मानक कार्यस्थल पर अधिकारों को बढ़ावा देता है और अच्छे रोजगार के अवसरों को प्रोत्साहित करता है, सामाजिक सुरक्षा को बढ़ाता है और कार्य संबंधी मुद्दों पर संवाद को मजबूत करता है. ये एक ऐसी संस्था है श्रोताओं जो हमको हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करती है और हमारे लिए एक बेहतर जो है माहौल बनाने के लिए हमें प्रेरित करती है. और हम में से हर कोई काम के दौरान होने वाली चोटों को रोकने के लिए जिम्मेदार है. जैसा कि हम बात ही कर रहे थे कि हम सभी एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि कहीं कहीं हम किसी ना किसी को रोजगार दे रहे हैं. तो सरकारों के रूप में भी हम कानून और सेवाएं प्रदान करने के लिए जिम्मेदार हैं, ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि श्रमिक रोजगार योग्य बने रहें और उद्यम फलते फूलते रहें। इसमें एक राष्ट्रीय नीति और कार्यक्रम का विकास और व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य कानून और नीति के अनुपालन को लागू करने के लिए निरीक्षण की प्रणाली शामिल है। और अभी हम देख रहे हैं शगुन की एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी चलन बहुत ही तेजी से बढ़ा है, तो कहीं ना कहीं हम अपने सुरक्षा मानकों पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि किस प्रकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटलीकरण, रोबोटिक्स और स्वचालन दुनिया भर में कार्यस्थलों में व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को नया रूप दे रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी नई तकनीकों का इस्तेमाल कार्यस्थल को और ज्यादा सुरक्षित और सेहतमंद बनाने में काम आएगा। और जैसे कि स्मार्ट हेलमेट्स, सेफ्टी सेंसर, ऑटोमेटेड मॉनिटरिंग सिस्टम, ये सब भविष्य की सुरक्षा के अहम हिस्से हैं।
Also, one more point that I would like to add here, Akarshita, that we as an employee, as an employer or as an individual, first and the basic step which we can take is about the health. If we are talking about the health domain over here, we can consider taking health related measures, and we can keep cleanliness can be one of the major things which we can care about. And as employers, we are responsible for ensuring the working environment is safe and healthy, which you were also focusing on. And as workers, let me tell you that provision also, we are responsible to work safely and to protect ourselves and not to endanger others, to know our rights and also to participate in the implementation of the preventive measures. We should be aware. Awareness is definitely very, very important.
जी हाँ, डिजिटल परिवर्तन की दीर्घकालिक व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य प्रभाव को पूरी तरह से समझने के लिए और अधिक शोध की आवश्यकता होगी, और हम सबको मिल करके इसमें दृढ़ संकल्प लेना होगा कि हम सब अपने कार्यस्थल को, अपने आसपास के लोगों को सुरक्षित महसूस कराएंगे और बेहतर बनाएंगे। अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं से जानने का कि उनके पास क्या विशेष है।
यस आकर्षिता, फर्स्ट सिक्किम, विल टेक आवर लिसनर्स टू सिक्किम। वेल, इन सिक्किम सेलिब्रेटिंग 50 इयर्स ऑफ स्टेटहुड, अ टू डे मोटरसाइकिल राइड कंक्लूडेड सक्सेसफुली ऑन संडे। वी हैव मोर ऑन दिस फ्रॉम आवर कॉरेस्पॉन्डेंट, लिसन इन।
The two-day 50 years of statehood celebration motorcycle ride concluded at Naya Bazar Soreng after a scenic and spirited journey through the district natural and cultural landmarks. Over 250 riders participated, covering key destinations like Borse Rhododendron Sanctuary, Agane Dunga, Sribadam and Kaluk Rinchipung. The event highlighted Soreng's vibrant heritage and stunning landscape, blending adventure with cultural exploration. Organized by the Soreng District Administration and partners, the ride symbolized Sikkim's unity and pride. Organizer thanked Chief Minister Prem Singh Tamang, participants and local community for their support in making the event a resounding success. Diliram Dulal, Akashwani News, Gangtok for Parikrama.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 अप्रैल रविवार को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में स्थापित विज्ञान केंद्र की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि आज का भारत का युवा साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की ओर बढ़ रहा है। और ब्यौरा दे रहे हैं रायपुर से हमारे संवाददाता।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ के माओवाद प्रभावित दंतेवाड़ा में स्थापित विज्ञान केंद्र का जिक्र करते हुए कहा कि यह साइंस सेंटर बच्चों और उनके माता पिता के लिए उम्मीद की नई किरण बन गया है।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा का विज्ञान केंद्र आजकल सबका ध्यान खींच रहा। कुछ समय पहले तक दंतेवाड़ा का नाम केवल हिंसा और अशांति के लिए जाना जाता था, लेकिन अब वहाँ एक साइंस सेंटर बच्चों और उनके माता पिता के लिए उम्मीद की नई किरण बन गया। इस साइंस सेंटर में जाना बच्चों को खूब पसंद आ रहा है। वे अब नई नई मशीनें बनाने से लेकर टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नए प्रोडक्ट बनाना सीख रहे हैं। उन्हें 3D प्रिंटर्स और रोबोटिक कारों के साथ ही दूसरी इनोवेटिव चीजों के बारे में जानने का मौका मिला है।
दंतेवाड़ा का यह साइंस सेंटर यहाँ रहने वाले बच्चों में वैज्ञानिक सोच विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। दंतेवाड़ा जिला पंचायत के CEO जयंत नाहटा ने बताया कि दूरस्थ इलाके में साइंस सेंटर की स्थापना से यहाँ पढ़ने वाले छात्रों को भी विज्ञान की वैसी ही जानकारी प्राप्त हो रही है जैसी कि बड़े शहरों में रहने वाले बच्चों को मिलती है।
साइंस सेंटर के अंदर हमने 10 विशेष कक्ष बनाए हैं। हर रूम में हमने कोशिश करी है कि ज्यादा से ज्यादा हम इंटरैक्टिव मॉडल्स, इंटरैक्टिव मशीन्स रख पाएं। हमारे अलग अलग रूम्स में एकदम टेक्निकली एडवांस्ड मशीन्स हैं, जैसे ह्यूमनॉइड रोबोट्स हैं, मोशन सेंसर कंट्रोल्ड हैंड्स हैं। तो हमारा पूर्णतः यह उद्देश्य है कि बच्चे यहाँ पे आए, सीखें और न केवल देखें, वहाँ पे खुद प्रयोग करें, खुद मशीन्स यूज करें। इसको हमने दुरुस्त अंचल क्षेत्र के बच्चों को ध्यान में रख के बनाया, जो तकनीक और आधुनिक विज्ञान से वंचित कहीं ना कहीं रह जाते हैं। हम चाहते हैं कि वो बच्चे भी उतना ही एक्सपोजर पाएं जैसा बड़ी सिटीज या कैपिटल में बच्चों को मिलता है।
नक्सल प्रभावित क्षेत्र में स्थापित यह साइंस सेंटर इस बात की मिसाल है कि अब यहाँ के लोग हिंसा के बजाय शिक्षा और अनिश्चितता के बजाय अवसरों को प्राथमिकता दे रहे हैं। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी रायपुर से मैं विकल्प शुक्ला।
वेल लिसनर्स, देयर इज अ न्यू बायोसेंसर प्लेटफॉर्म व्हिच इज डेवलप्ड बाय आईआईटी मद्रास टू टेस्ट प्रेग्नेंट वुमेन फॉर प्री एक्लम्प्सिया, अ लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन दैट अकर्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। Well, the researchers have come together to develop a point-of-care testing using fiber optic sensor technology as a possible alternative to existing technologies. We have more on this from our correspondent.
Pre-eclampsia is a life-threatening complication which occurs during pregnancy and affects a large number of pregnant women and newborns worldwide. An affordable screening of this complication at an early stage is necessary to ensure timely treatment and minimize both maternal and neonatal morbidity and mortality rates. The usual method to detect pre-eclampsia is time-consuming, requiring huge infrastructure and trained personnel, which makes this test mostly inaccessible to remote areas and resource-limited settings. Therefore, there is an urgent need for an easily accessible point of care testing device with 35 features for the diagnosis of the condition. Professor V.V. Raghavendra Sai said that the placental growth factor is an angiogenic blood marker used for this diagnosis. It is a path-breaking technology with reasonable costs. Joy, Akashvani, reporting for Parikrama from Chennai.
उत्तराखंड में चार धाम यात्रा का शुभारंभ होने वाला है। 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा शुरू हो जाएगी। चार धाम यात्रा न केवल आस्था का पर्व है, बल्कि इस बार सुविधाओं और सुरक्षा इंतजामों के लिहाज से भी ये बेहद खास बन गई है। क्या है इस बार की तैयारियां और यात्रियों के लिए क्या हुए हैं नए इंतजाम, आइए जानते हैं हमारे संवाददाता से।
आस्था, श्रद्धा और विश्वास का प्रतीक चारधाम यात्रा को इस वर्ष और अधिक सुरक्षित, सुविधाजनक और व्यवस्थित बनाने के लिए राज्य सरकार ने व्यापक तैयारियां की हैं। तीर्थ यात्रा के लिए ऑनलाइन पंजीकरण जारी है और आज से ऑफलाइन पंजीकरण भी शुरू हो गए हैं। 60% पंजीकरण ऑनलाइन जबकि 40% पंजीकरण ऑफलाइन किए जाएंगे। अब तक करीब 23 लाख श्रद्धालुओं ने चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण करवा लिया है। चारधाम यात्रा के सुरक्षित संचालन के दृष्टिगत इस वर्ष 50 साल से अधिक आयु के श्रद्धालुओं के लिए स्वास्थ्य परीक्षण अनिवार्य किया गया है, ताकि कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में कोई अप्रिय घटना न हो। इस बार यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य सुविधाएं काफी मजबूत की गई हैं। सभी मुख्य पड़ावों पर एम्बुलेंस, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और आपातकालीन चिकित्सा दल तैनात हैं। यात्रा मार्ग पर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती भी की जा रही है। सड़क मार्ग और पैदल रास्तों की बात करें तो यहाँ व्यवस्थाएं पहले से कहीं बेहतर की गई हैं। यात्री विश्राम स्थलों पर आधुनिक शौचालय, स्वच्छ पेयजल, विश्राम गृह और भोजनालय बनाए गए हैं। इस वर्ष एक नई और खास पहल की गई है, ग्रीन चारधाम यात्रा अभियान। इसके तहत यात्रा मार्गों पर प्लास्टिक प्रतिबंध को सख्ती से लागू किया जाएगा और हर श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान पर्यावरण संरक्षण में सहयोग देने की अपील की जाएगी। जगह जगह ग्रीन वॉलंटियर तैनात होंगे जो यात्रियों को जागरूक करेंगे। इसके अलावा तीर्थ यात्रियों के लिए मल्टी लैंग्वेज हेल्पलाइन शुरू की गई है, जिससे हिंदी, अंग्रेजी के अलावा तमिल, बंगाली, कन्नड़ जैसी प्रमुख भाषाओं में भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। गौरतलब है कि बुधवार को उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए दर्शनार्थ खोले जाएंगे। इसके बाद 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे। परिक्रमा के लिए आकाशवाणी देहरादून से संतोष थपलियाल।
अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। जयपुर में आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंक तालिका में गुजरात टाइटंस 8 मैच में 12 अंक के साथ दूसरे स्थान पर है। राजस्थान रॉयल्स ने 9 मैच खेले हैं जिसमें उसके सिर्फ 4 अंक हैं। तालिका में राजस्थान 10 टीमों में 9वें स्थान पर है।
Well, after sports, let's focus on the happenings of the business world, beginning with the benchmark domestic equity indices. They today ended over 1.2% up, fueled by strong earnings reports and significant gains in energy, oil and gas, and PSU bank stocks. The 30 share index at the Bombay Stock Exchange Sensex surged 1,006 points to close at 80,218. The National Stock Exchange Nifty 50 gained 289 points to settle at 24,329. In the global crude market, Brent crude was trading over 0.4% down at $66.58 per barrel, and WTI crude was trading almost 0.5% down at $62.72 per barrel when reports last came in. And in the Indian bullion market, 24-carat gold was trading down at 94,560 rupees per 10 grams, while silver 999 fine was also trading down at 96,390 rupees per kilogram when the reports last came in.
और अब समय है उन व्यक्तियों को याद करने का जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन। इसी क्रम में सबसे पहले हम याद करेंगे भारत के स्वतंत्रता संग्राम के महान सेनानियों को।
We remember social reformer Madhusudan Das, who was born on the 28th of April 1848 at Cuttack district, Odisha. He founded Utkal Sammilani in 1903. That successfully campaigned for the creation of Odisha on the 1st of April 1936. The first graduate and advocate of Odisha, he is also known as Kulabruddha, Grand Old Man, and Utkal Gaurab, the Pride of Utkal. In Odisha, his birthday is celebrated as the Lawyer's Day on the 28th of April.
Madhusudan Das started Desha Mishra Andolan and worked hard for the social, political and economic uplift of the people of eastern India. He rendered his admirable service to the nation as a very successful lawyer, social reformer and patriot. He was acclaimed as a great legislator and journalist. He was the first Odia to be the member of the Legislative Council and member of Central Legislative Assembly. He had the distinction of being the first Indian minister.
He was also an excellent orator in Odia, English and Bengali. As a writer and poet, patriotism was always at the forefront of his mind, and that was reflected in all his literary works. He penned a number of articles and poems in both English and Odia. Some of his important poems are Utkal Santan, Jati Itihash and Jananir Ukti.
Madhusudan Das died on the 4th of February 1934, and by the time of his death, he had spent all his property on the well-being of the people of Odisha. His immense contribution towards the state and nation would be admired forever. We salute the great nationalist.
We also remember martyr Kehar Gajan Singh, who was beaten to death in prison by the British authorities on the 28th of April 1925. A resident of Hoshiarpur, Punjab, Singh joined the peaceful Sikh Jatha to Jaito Gurudwara, Gangsar, Nabha in 1924 against the British order prohibiting all prayer assemblies.
The Jatha was stopped by the orders of Wilson Johnston, the administrator of Nabha, and the police arrested a number of its members. Gajan Singh was also arrested and beaten to death in Nabha Bir jail on the 28th of April 1925. We salute the great son of the soil.
We also remember independence activist Narayan Singh, who took part in the first War of Indian Independence in 1857. Initially a sepoy in the English East India Company Army in Khandesh, Maharashtra, Singh fought the British at different places in Khandesh. He was caught while defending the British attacks and was charged with desertion and mutiny against the British. He was sentenced to transportation for 10 years. And died in the Andaman Islands on the 28th of April 1860. We salute the great son of India.
आज कन्नड़ साहित्यकार, उपन्यासकार, समालोचक, नाटककार और निबंध लेखक विनायक कृष्ण गोकाक की पुण्यतिथि है। विनायक कृष्ण गोकाक के नाटकों में जननायक और युगांतर विशेष रूप से उल्लेखनीय है। उन्हें कन्नड़ भाषा में आधुनिक समालोचना का जनक कहा जाता है। उनकी मुख्य रचनाएं हैं भारत सिंधु रश्मि, कलोपासक आदि। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार, पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
Well, listeners, today we are also remembering K.N. Pandikar, master playwright and poet who set a new direction for the theatre movement. Well, he has been honoured with the Padma Bhushan in the year 2007. There are other accolades as well. He was honoured with Sangeet Natak Academy Fellowship for Lifetime Achievement in the year 2002. Well, as a lyricist, he has worked in nearly 40 films, including national award-winning Manjanidhi Kuru. Well, also he wrote plays, he also wrote poetry, essays and theoretical texts on the music of Kerala, which has been called Sopanam. He directed plays and also guided the Mohiniattam dancers. This is really important to note here. He also took early steps in reviving the oldest theatre dance form of India, Kudiyattam.
Bhartiya cinema mein mashhoor ड्रेस डिजाइनर के रूप में जानने वाली भानुमति अन्ना साहेब राजोपाध्याय की आज जयंती है। वे ऐसी पहली भारतीय महिला रही जिन्हें ऑस्कर पुरस्कार से नवाजा गया। भानुमथैया 5.5 दशक तक हिंदी सिनेमा में सक्रिय रही। उन्हें प्रसिद्ध फिल्म निर्माता निर्देशक रिचर्ड की फिल्म गांधी के लिए सर्वश्रेष्ठ ड्रेस डिजाइनर का ऑस्कर मिला था। भानुमथैया 100 से भी अधिक फिल्मों के लिए डिजाइनिंग कर रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा चुकी थी।
Well, listeners, today we are also remembering J.W. Gibbs, mechanical engineer and scientist who made fundamental theoretical contributions to first physics, also chemistry and also mathematics. His work on the applications of thermodynamics, well, this is a branch of physics that deals with heat, work and temperature and their relation to energy and the physical properties of matter and radiation, thermodynamics. And this was instrumental in transforming physical chemistry into a rigorous deductive science here. Well, he, as a mathematician, he created modern vector calculus. Well, this plays an important role in differential geometry and in the study of partial differential equations. This is J.W. Gibbs.
आज बॉलीवुड, दक्षिण भारतीय और अंग्रेजी फिल्मों में अभिनय करने वाले टेलीविजन और फिल्म अभिनेता सलीम गौस की पुण्यतिथि है। धारावाहिक भारत एक खोज और सरदारी बेगम तथा सोल्जर जैसी कई फिल्मों में अभिनय से उन्होंने अपनी एक विशेष पहचान बनाई थी। सलीम गौस ने साल 1978 में फिल्म स्वर्ग नर्क के साथ अपने अभिनय की शुरुआत की। दूरदर्शन पर आने वाले सीरियल भारत एक खोज इनमें सबसे अहम था। इस शो से उन्हें घर घर में पहचान मिली थी। आइए सुनते हैं भारत एक खोज से ही उनका ये डायलॉग।
तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जिनके लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए, और फिर बुद्धिमत्ता की बातें कर रहे हो। अर्जुन, बुद्धिमान तो कभी मरे हुओं या जीवित लोगों के लिए शोक नहीं करते। ऐसा कोई काल नहीं हुआ जिसमें मैं ना रहा हूं या तुम ना रहे हो या ये राजपुरुष ना रहे हों, और ऐसा कोई काल होगा भी नहीं जिसमें हम सब ना रहे। जैसे कोई मनुष्य अपने पुराने वस्त्रों को छोड़ नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही जीव आत्मा एक शरीर को छोड़ दूसरे शरीर को धारण करती है।
Well, listeners, today we are also remembering another physicist, Arthur Leonard Sholo. Well, along with Charles Townes, he developed a theoretical basis for laser science. His central insight was the use of two mirrors as the resonant cavity to take laser action from microwaves to visible wavelengths. Well, his early work, let me talk about that also, it included examination of the shapes, also radical charge distributions and moments of nuclei. Well, the first microwave spectroscopy of a free radical and also a widely used text on microwave spectroscopy. Well, also listeners, in this segment, we're also remembering another musician here, Charlie Payton. Well, he has been focusing on the genre Delta Blues musician, and he has been considered as the father of the Delta Blues. And for that purpose, let's make you listen to this wonderful song by him.
और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का, तो इजाजत दीजिए आकर्षिता और शगुन को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की।
थैंक यू सो मच लिसनर्स फॉर ट्यूनिंग इन। नमस्कार।